VOA News via remote. Zealand Prime Minister Jacinda Ardern delivered the biggest election victory for her center-left Labour Party in half a century, as voters rewarded her for a decisive response to COVID-19. Her, quote, go hard, go early approach has eliminated locally spread COVID-19 in the nation. Countries including Germany, Austria, Poland, Ukraine, and the Czech Republic reported record daily increases in the number of coronavirus infections. Austria's foreign minister has tested positive for the coronavirus and might have caught it at a meeting with his European Union counterparts on Monday, a spokeswoman for his ministry said. A man living in the same Vatican residence as Pope Francis has tested positive for COVID-19 and gone into isolation, the Vatican said. Australia's coronavirus hotspot of Victoria recorded a single case on Saturday, the lowest daily number since early June, and no deaths, with the state's top health official calling the figures wonderful, spelled O-N-E for the one. The Russian Direct Investment Fund and Dr. Reddy's Laboratory Ltd. have received renewed approval to conduct late-stage clinical trials in India of the Russian COVID-19 vaccine, the Sovereign Wealth Fund said on Saturday. Pfizer said it could file in late November for U.S. authorization of the COVID-19 vaccine it is developing, suggesting that a vaccine could potentially be available in the country by the end of the year. And the World Health Organization said it would assess monoclonal antibodies and other antiviral drugs in its trial of potential COVID-19 treatments after the trial found Gilead Sciences' remdesivir had no impact on survival rates. Please check out our website for other news stories. This is VOA News. Thousands of Thai pro-democracy protesters massed in multiple locations across Bangkok Saturday, defying an emergency decree banning gatherings for the third consecutive day after confrontations saw riot police use water cannons on peaceful demonstrators. Officers dispersed thousands of protesters Friday night by spraying water laced with blue dye and a chemical agent to mark participants for future legal action. But the escalation in police tactics has not cowed the youth-led protest movement, which is demanding the resignation of a ruler first brought to power in a military coup and reform of the kingdom's powerful monarchy. Protesters are raising a three-finger salute adopted from the Hunger Games films, as a symbol by the pro-democracy movement. Prime Minister Prayut Chan-o-cha extended an emergency decree banning gatherings of more than four people by another month on Friday. Protesters are demanding the abolition of a strict royal defamation law and for the monarchy to stay out of politics. Since taking the throne in 2016, the current king has put the palace's fortune under his direct control. Its worth is estimated at $60 billion. The White House quietly told the U.S. state of Tennessee that a statewide mask mandate must be implemented to curb its growing spread of COVID-19. The White House and Republican Governor Bill Lee did not discuss the recommendations publicly before a report emerged in a records request and was first reported by a local news outlet. Lee has let counties decide whether to require masks in public. The report takes the strongest tone to date in urging Tennessee to act, though Lee has made it clear for months that he does not think masks should be required across the state. The White House did not immediately respond to a request for comment. All this comes after the number of coronavirus cases in the United States topped 8 million on Friday. Rescuers raced against time early Saturday to find survivors of a fresh missile attack, which has killed at least 10 people and wounded 40 others in Azerbaijan's second largest city of Ganj. Azerbaijan accused Armenia of the attack that destroyed residential homes in the latest sign that a Russian-brokered ceasefire agreed to last Saturday had broken down. The deal was to allow the sides to swap detainees and the bodies of those killed. More than 10 people were killed and 40 others wounded, an Azerbaijani presidential aide said in a tweet. Armenian and Azeri forces fought new clashes on Friday, defying hopes of ending nearly 3 weeks of fighting over the enclave. Via remote, I'm Laurel Blumen for VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रही हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। 10 अक्टूबर को अक्वामे मुत्तहदा का नामजद करता मेंटल हेल्थ डे था। हर साल इस दिन के लिए कोई थीम मुंतखब किया जाता है। इस साल की थीम है कि मेंटल हेल्थ पर सरमायाकारी एक अहम जरूरत है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमने पाकिस्तान और भारत से अपने कुछ माहिरीन को मदु किया है। मैं उनके नाम बताती हूँ आपको और इसके बाद अपना मुख्तसर तारुफ खुद कराएंगे। कराची से हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा मियां। भारत में लुधियाना पंजाब से डॉक्टर अनिरुद्ध काला हमारे साथ हैं। नई दिल्ली से हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जुगल किशोर साहब। कराची से ही डॉक्टर शलीना बामानी और मुल्तान से डॉक्टर मुनेजा भट्ट। तो मैं शुरू करना चाहूंगी डॉक्टर आयशा आपसे। थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से इस वक्त ज़हनी सेहत के बारे में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने का आपके शो में। जैसे आपने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर आयशा मियां है और मैं दोनों अडल्ट और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री की में अपना काम मेरा है। मैं 7 years आई वॉज द चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एट आगा खान यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे आई हैव आल्सो बीन द फाउंडिंग डीन ऑफ स्टूडेंट्स। जहाँ तक पॉलिसी की बात है, हमारे पास पॉलिसी जो है वो किसी हद तक मौजूद है। पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है 1992 से इन इफेक्ट है। उसके बाद वो रिवाइज हुई 2001 में और दोबारा 2013 में, जिसके बुनियाद पे मेंटल हेल्थ एक्ट बने और अगेन 2001 में 2003 में रिवाइज हुए, 2013 में भी रिवाइज हुए। जब डेवोल्यूशन हुआ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का टू द प्रोविंसेस, तो उसमें जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल हेल्थ एक्ट की प्रोविंसेस को चली गई। तो इस वक्त हमारे सारे सूबों में मेंटल हेल्थ एक्ट मौजूद है। कुछ सूबों में इम्प्लीमेंट हो रही है और एक्टिव भी है, लेकिन ज्यादातर सूबों में नहीं हो पाई है। तो सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट एक्चुअली काफी हद तक एक्टिव है, उसकी अथॉरिटी है, उसके देयर इज अ होल ग्रुप लोगों का जो कि डिफरेंट यू नो इंटरवेंशंस एंड इनिशिएटिव्स जो है वो उस पे काम करते रहते हैं। अभी कोविड के दौरान भी देयर वाज अ हेल्पलाइन दैट वाज क्रिएटेड और भी इस तरह के बहुत इनिशिएटिव्स हुए थे सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट के हवाले से। पंजाब में भी मेंटल हेल्थ एक्ट है और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी है, उधर भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे लार्जर लेवल पे होना जरूरी है ताकि एक स्ट्रेटेजिक प्लान हमारे सामने हो कि किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलना है इस मेंटल हेल्थ के हवाले से।
यही सवाल डॉक्टर अनिरुद्ध काला आपसे मैं करूंगी। इंडिया का जहां तक मुझे याद है कि शायद सन 2014 में उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान किया था।
मेरा नाम अनिरुद्ध काला है, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ लुधियाना शहर में। इसके पहले मैं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ और आजकल मेरी अपनी प्रैक्टिस है, एक माइंड प्लस नाम का साइकाइट्रिक डिजीज़ का हॉस्पिटल हम रन करते हैं। ये जो आपने पॉलिसी बताई, ये आपने बिल्कुल सही बताया, 2014 में मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंडिया की पहली बार बनी और फर्स्ट एवर। आई वाज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, 10 ग्रुप एक्सपर्ट्स हु ड्राफ्टेड दैट पॉलिसी एंड सबमिटेड इट टू द गवर्नमेंट। और 1987 से एक एक्ट, पहली बार एक्ट हुआ था मेंटल हेल्थ एक्ट और उसके बाद 3 बार बदल चुका है और जो लेटेस्ट है वो 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहते हैं।
डॉक्टर आयशा ने अभी बात की तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया कि गो के एक्ट मौजूद है, पॉलिसी भी है, लेकिन तमाम सूबों में उसका इतलाक नहीं है, तो आप इंडिया में क्या सूरत हाल है?
देखिए ऐसा है कि मेंटल हेल्थ एक्ट तो हमारे सभी स्टेट्स में ऑल ओवर द कंट्री इट इज इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि एक तो ये 87 से है, वो उनके नाम बदल गए और रूल्स बदल गए वो दूसरी बात है, पर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ एक्ट 87 के बाद हमारे रेगुलरली इम्प्लीमेंटेड रहा है। अब रही बात पॉलिसी की, जो कि आज की डिस्कशन के हिसाब से ज्यादा जरूरी
है। हाँ, बिल्कुल।
हमारे यहाँ बेसिकली जो एम्फेसिस है पॉलिसी का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, In addition to what we have in the name of the, you know, 300 medical colleges, उनके अपने departments हैं और जो higher education के institutes हैं like PGI and All India Institute and NIMHANS in Bangalore, वो अलग से.
डॉक्टर शैलीना, अब मैं मुख्तसरन आप अगर अपने बारे में हमें बताएं, आपका शोबा इस लिहाज से बहुत अहम है कि अर्ली चाइल्डहुड से मुतालिक है. माहिरीन का भी कहना है कि बच्चों के नफसियाती मसाइल को अगर बिल्कुल बचपन से उनसे डील किया जाए तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनके बेहतर होने के.
मेरा नाम शैलीना भवानी है और मैं बहैसियत पेरेंटिंग प्रोग्राम की एजुकेशन लीड काम कर रही हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में. और मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसर्च है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी इब्तदाई बचपन की नशोनुमा. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन शहनाज, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एनी प्रेगनेंट वुमेन एंड अ चाइल्ड जो है वो एक चाइल्ड राइट्स चार्टर का पार्ट है और पाकिस्तान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो उसकी सिग्नेटरी है. सो बेसिकली इन सारी LMICs और कंट्रीज ने साइन किया है कि हम जो भी चाइल्ड राइट्स चार्टर्स के कंपोनेंट हैं, यानी हेल्थ प्रोटेक्शन सेफ्टी एंड वेलबींग, उसको हम जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे. सो चार्टर का पार्ट है ये सारी कंट्रीज. सो पहली तो सबसे अहम बात ये है. सेकेंड, जो पॉलिसी की बात डॉक्टर आयशा ने की कि डेफिनेटली हमारे यहाँ पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है. थर्ड ये कि इसकी इम्प्लीकेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अब जब हम बात करते हैं इब्तदाई बचपन की नशोनुमा यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, सो वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो उसका स्टार्ट होता है वो प्रेगनेंसी से हो रहा है. काफी सारी रिसर्च इस अराउंड पे हुई हुई है कि अगर प्रेगनेंट वुमेन की मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को एड्रेस नहीं किया जाए तो वो फर्स्ट 1000 डेज में जो बच्चे की ट्रेजेक्ट्री बनती है वो उसकी ट्रांसजेनरेशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है. जब हम कहते हैं ट्रांसजेनरेशनल हेल्थ, यानी अगर वो सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेगनेंसी में एड्रेस नहीं हुए तो वो समहाउ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है और बच्चा जो है वो इन यूट्रो एनवायरमेंट, जो इन वोम्ब एनवायरमेंट कहते हैं ना, उसी के अंदर उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आना शुरू हो जाता है.
हम दोबारा आते हैं इस बारे मसाइल पर बात करने के लिए अभी, लेकिन पहले मैं डॉक्टर मुनेजा आपसे कहूंगी कि आप सिर्फ हम तारुफ करा दें क्योंकि पॉलिसी पे हमें हमारे दोनों पाकिस्तान के बता चुके हैं. हम फिर डॉक्टर जुगल किशोर की तरफ जाएं.
अस्सलाम वालेकुम टू ऑल.
वालेकुम
सलाम. मैं मुल्तान में सिंस 2007 कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ. पहले मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही थी एंड करंटली आई एम वर्किंग इन साउथ एशियाज फर्स्ट सेंटर इन मुल्तान, दैट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, एंड आई एम अपॉइंटेड हियर एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट.
और डॉक्टर जुगल किशोर की तरफ चलते हैं. डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक कम्युनिटी मेडिसिन से है तो मुख्तसरन आप बताइए कि इस साल जो मौजू है, जो अक्वामे मुत्तहिदा जिस चीज पे जोर दे रहा है और जो इदारा इन्वेस्टमेंट पर मेंटल हेल्थ के शोबे में, तो जाहिर है कि जनूबी एशिया में मसाइल यकसाई हैं, तो आपको क्या मसाइल नजर आते हैं इस वक्त?
डॉक्टर जुगल किशोर, वर्किंग एज डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड कम्युनिटी मेडिसिन. फॉर्चुनेटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू PhD इन साइकियाट्री and had visited France to learn community psychiatry. जो आपने प्रश्न पूछा मेंटल हेल्थ के बारे में, तो WHO का इस बार जो थीम है इन्वेस्टमेंट का, वो मैं ये बता दूं कि अगर हम जब से हमारा ये पॉलिसी और एक्ट बना है, अगर हम उससे पहले देखें तो मेंटल हेल्थ पर खर्चा बहुत कम था. ऑल्दो बहुत सालों से हमारे देश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन उस पे जैसे और दूसरे हेल्थ प्रोग्राम के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया. 1.1% के करीब हमारी GDP पब्लिक हेल्थ में जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जो एक हमारी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए या हमारे जो वर्कर्स हैं वो बिल्ड होने चाहिए वो नहीं है, या उनको हम हायर कर सकते हैं वो नहीं है. अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें या फिर नर्सिस की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, तो अभी भी बहुत कमी है. पूरे क्षेत्र में देखें तो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में शायद एक साइकियाट्रिस्ट भी नहीं मिलेगा कहीं कहीं पर, बाकी और जगह पर बहुत ज्यादा मिलेंगे, दिल्ली में बहुत ज्यादा है. तो ये जो मुद्दा इन्होंने इस बार छेड़ा है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हर सरकार इन्वेस्टमेंट करे मेंटल हेल्थ में, बल्कि नॉट मेंटल हेल्थ बट ओवरऑल हेल्थ के अंदर, तो डेफिनेटली हमें बहुत फायदा होगा. हमारे देश की और पूरे इस एरिया की जो हेल्थ है उसमें बहुत اضافہ ہوگا.
درست. تو یہیں سے میں پھر ڈاکٹر عائشہ آپ سے پوچھوں گی کہ اگر ہم یہ بات کریں اوور آل جو ہیلتھ کی پالیسی ہے تو اس میں کیا حصہ ہے مینٹل ہیلتھ کا, یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ جو ملنا چاہیے اس کو حصہ. مجھے پتا ہے آپ ایک بہت ہی موقر اسپتال میں کام کرتی ہیں, لیکن اگر پاکستان کی مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس میں ہے کچھ حصہ مینٹل ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کا؟
دیکھیں مینٹل ہیلتھ پہ تو انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر ہم فرام دا ویری بگننگ بھی اس چیز کو دیکھیں تو آپ کی ہیلتھ کو بہت کم جی ڈی پی کا حصہ جاتا ہے, اور اس ہیلتھ میں مینٹل ہیلتھ کو تو بہت ہی زیادہ کم جاتا ہے. ابھی جیسے کووڈ کے دوران بھی اتنا زیادہ لوگ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوئے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے اتنے میجر کنسرن سامنے آئے ہیں, تو اس میں بھی مینٹل ہیلتھ کی ابھی تک باری اس لیول پہ نہیں آئی ہے جتنی آ جانی چاہیے. پیپل آر ناٹ انویسٹنگ, گورنمنٹس آر ناٹ انویسٹنگ ان مینٹل ہیلتھ. دوسرا ہماری جو ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے میڈیکل اسکولس میں بھی موسٹ آف آر میڈیکل اسکولس میں سائیکائٹری یا مینٹل ہیلتھ نہیں پڑھائی جاتی ہے. اٹس ناٹ مینڈیٹری, پی ایم ڈی سی کی طرف سے بھی مینڈیٹری نہیں ہے. تو وچ از وائی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پالیسی لیول پہ بھی بہت ضروری ہے کہ میڈیکل کالجز نہیں, اگر آپ کے 100-150 جو میڈیکل اسکولس ہیں اس میں صرف 3 یا 4 ہیں جو کہ سائیکائٹری پڑھاتے ہیں اور سائیکائٹری کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو یہ چیز اس لیول پہ بھی چینج, پالیسی لیول پہ چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈاکٹرز ہی کو امپورٹنس نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, کیوں سائیکائٹری امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کو پڑھائی نہیں گئی, تو پھر باقی لیولز پہ باقی کمیونٹی میں تو پھر باری اس کی بہت دیر میں آتی ہے. سو ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہر لیول پہ, پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ, یو نو سیکنڈری پہ, ٹریننگ میں, ایجوکیشن میں, ریسرچ میں, وی ریئلی نیڈ ٹو انویسٹ in the area of mental health.
اچھا مختصراً ایک اور آپ سے کہ آپ کی ریسرچ ہے اس میں کہ لٹریسی بڑھائی جائے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, تو اس سے کیا مراد ہے؟
مینٹل ہیلتھ لٹریسی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا لے مین کو کتنی چیز سمجھ میں آتی ہے اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, واٹ ڈو دے انڈرسٹینڈ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ وی آر ناٹ نیسسریلی ٹاکنگ کہ ہم اس ایلنس کی بات نہیں کر رہے ہیں, مینٹل ڈسارڈرز کی اور سائیکیٹرک ڈسارڈرز کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صحت کی بات کر رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ چیز اگر اس سال کی تھیم جو کہ ایکسیس, ہر ایک کو مینٹل ہیلتھ کا ایکسیس ملنا چاہیے, ہر ایک کو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کی تھیم یہی ہے کہ دیر از نو ہیلتھ ود آؤٹ مینٹل ہیلتھ. کہ آپ ایک جب کہتے ہیں کہ یو نو ایک چیز الگ کر دیتے ہیں جسمانی صحت اور دماغی صحت, تو یو نو آپ کا برین بھی جسم کا ہی ایک حصہ ہے. اینڈ آپ یہ کہہ کے کہ ہم باقی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن دماغی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, تو وی آر مسنگ آؤٹ آن اے ویری بگ پارٹ آف ہیلتھ. سو مینٹل ہیلتھ لٹریسی کا مطلب ہے کہ اسکولز لیول سے لے کے جیسے شلینا بتا رہی ہیں کہ یو نو او بی جی اور پریگنسی کے اس لیول سے لے کے, اسکولنگ سے لے کے, کالجز, ورک پلیس, آپ کی کمیونٹی لیول پہ ہر جگہ یہ چیز انٹیگریٹ ہو جائے کہ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے, ایک لے مین جو ہے اس چیز کو سمجھ پائے مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے.
اور ڈاکٹر کالا میں اب آپ سے پوچھوں گی کہ جب ہم ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ایکسس کس حد تک عام آدمی کی, لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب کسی بھی ذہنی مرض کی بات ہوتی ہے تو کس حد تک لوگ چاہتے بھی ہیں, یعنی مطلب وہ کیونکہ ایک ٹھپا جو لگا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں ان کو پاگل قرار کہہ دیا جاتا ہے اگر کسی طرح کا بھی کوئی عارضہ ہوتا ہے ذہنی.
جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اس کے پہلے ڈاکٹر جگل کشور نے جیسی بات کہی کہ 1% جی ڈی پی کا ہیلتھ کو ایلوکیٹ ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس 1% کا 1% آگے مینٹل ہیلتھ پر ہوتا ہے. جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے لینسٹ کے ایک سیریز آف آرٹیکلز نے یہ کہا تھا, یہ ثابت کیا تھا کہ اگر مینٹل ایلنس جلدی ٹریٹ ہو, صرف ڈپریشن اور انگزائٹی ہی جلدی ٹریٹ ہو, تو مینٹل ہیلتھ میں جو اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں تو وہ $4 واپس آئیں گے ان دا فارم آف انکریز پروڈکٹیویٹی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات ہمارے بیوروکریٹس کو یا پولیٹیشینس کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ ان کو آتی ہے, سب کو سمجھ آتی ہے, لیکن اس میں جو پرابلم یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں سچویشن ایک جیسی ہی ہے. آئی ہیو بین فارچونیٹ ٹو ہیو ٹریول ٹو پاکستان سیورل ٹائمز, ایکچولی 5-6 times. So what I can say is this, the problems are the same and the social setup is the same. So what is the problem? Problem in my view is that jab tak health ya mental health political issues nahi hote tab tak yahan investment nahi aane wali hai. ہمارے یہاں کتنے الیکشن لڑی گئی ہیں کہ ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کو ایشو بنا کے؟ ایک بھی نہیں, ہمارے یہاں تو نہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی نہیں. سو اور ہیلتھ منسٹر جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکلی کوئی زیادہ اسٹرانگ, پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, بلکہ کسی سینئر پولیٹیشنس کو آپ بناتے ہیں ہیلتھ منسٹر تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. سو ٹل دس تھنگ بیکمز اے پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایشو, وی ول ناٹ, منی گوز ویئر دا, یو نو, دا پولیٹیکل اسٹرینتھ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
تو ڈاکٹر منیر صاحب, پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا فرق ہے سائیکیٹرسٹ میں اور سائیکالوجسٹ میں, اور پھر یہ کہ آپ ملتان میں ہیں تو وہاں پر کس طرح کے ادارے ہیں اس؟
اچھا, یہاں پہ میں اس چیز کو انڈورس کروں جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو امپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے یا فیسلٹیز کی بات ہو رہی ہے یا انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ ایک تو جیسے یا لٹریسی کی بات کی ہے, مینٹل ہیلتھ لٹریسی کی, یہاں پہ ابھی تک سٹل جو ایک اویئرنیس ہے ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز یا ڈس آرڈرز سے ریلیٹڈ ایشوز کے, لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے جس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو فیسلٹی اویلیبل ہے یا کم اویلیبل ہے, اس میں میں آپ کو کوٹ کروں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں اس میں 24 million پیپل آر ان نیڈ آف سائیکیٹرک اسسٹنس, جن کو سائیکیٹرک 24 million.
اچھا,
تو اس میں پھر یہ کہ ابھی یہاں پہ جو سچویشن ہے دیٹ از 0.19 سائیکیٹرسٹ آر اویلیبل فار 100,000 انہیبیٹنٹس, تو اس میں وہ نیڈ آپ کی پوری نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ نے ایک کوشچن کیا کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا ڈفرینس ہے, تو بیسیکلی سائیکیٹرسٹ از بیسیکلی از ٹو ڈیل ود دا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اینڈ اس نے میڈیکیشن پرووائڈ کرنی ہے. سائیکالوجسٹ کا کام ہے اس کے سائیکولوجیکل آسپیکٹس کو فوکس کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, اسسمنٹ کرنا اور اس کو تھراپیوٹیکلی ٹریٹ کرنا. اور سم ٹائمز ڈس آرڈرز میں ہم جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ہم وہاں پر فارماکو تھراپی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں میڈیسن کے ساتھ ساتھ تھراپیوٹک انٹروینشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اب بات کریں یہاں پر فیسیلٹیز کی, تو یہاں پر اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں پھر بھی, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ایک جیسے نشتر ہاسپٹل ملتان ہے وہاں پہ میجر فیسیلٹی موجود ہے, ایک ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرسٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر فیسیلٹی سائیکیٹرک فیسیلٹی موجود ہے, ادر وائز پرائیویٹ سیکٹر میں پھر بھی ہے, گورنمنٹ سیکٹر پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا اور وہ نیڈ پوری نہیں کرتا جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر سائیکیٹرک فیسیلٹیز کی.
جی شکریہ. شلینا, آپ بات کر رہی تھیں کہ اگر ماں جو ماں بننے والی ہیں ان کا ارلی اسٹیج پہ اگر ان کے اپنے جو مسائل ہیں نفسیاتی ان کا علاج کر دیا جائے تو بچے میں جو ٹرانسفر ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس کی وضاحت اگر آپ کریں.
سو بیسیکلی ان یوٹرو جو ہے ہمارا کانسیپٹ جو ہے پاکستان اور ہمارے ایل ایم آئی سی کنٹری میں تھوڑا سا نیا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں ویسٹرنائزیشن میں کافی زیادہ اس پہ انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پری نیٹل ایجوکیشن. سو ایک تو بات ہوتی ہے میڈیکل تھراپیوٹک نیڈس کی, تیسری چیز مینٹل ہیلتھ میں جو ضروری ہے وہ ہے ایک ماسو لیول ایجوکیشن, ایجوکیشن آف پریگننٹ ویمن, ایجوکیشن آف فیملیز, ایون ایجوکیشن آف ینگ انفینٹس اینڈ چلڈرن فال انڈر ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ ایج. تو اگر ہم یہ سارا ایجوکیشن اور ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ ہم اس کو بہت فرسٹ 1000 ڈیز سے ہی اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کی لیٹر لائف افیکٹ جو ہے وہ بہت آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آپ دیکھیں ایڈورسٹی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ڈفرینٹ کانفلکٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے ڈسکریمنیشن ہے, دس میں آل بی ڈیو ٹو بیکاز ان کی مینٹل ہیلتھ رائٹ ٹائم پر ایڈریس نہیں ہوتی ہے اور یہ اسکیمز ارلی چائلڈ ہوڈ میں ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. سو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی بناتا ہے, پھر ان کی وائف پریگنٹ ہوتی ہے, پھر وہ بچے ہوتے ہیں, یہ ایک وشیس سائیکل سے جو ہے وہ ہم ان کو نکال نہیں پاتے. سو اگر ہم یہ انٹروینشنز پری نیٹل اسٹیج پہ اور ارلی چائلڈ ہوڈ اسٹیج پہ کرنا شروع کر دیں تو یہ انویسٹمنٹس بہت پازیٹیو امپیکٹ لا سکتی ہیں فیوچر ڈیولپمنٹ میں, اس بچے کی بھی, اس فیملی کی بھی اور کنٹری ایٹ لارج کی بھی.
اچھا, بچوں میں کس عمر میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں؟ اگر ان میں کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو کس عمر سے پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ ہے ایسا مسئلہ؟
تو دیکھیں یہ ذہنی مسئلوں کی کوئی, میرے خیال سے ڈاکٹر عائشہ بھی اس کو ریکٹیفائی کریں گے, کہ کوئی ایسا عمر نہیں ہوتی, लेकिन हमारी जो है इन्फेंट मेंटल हेल्थ एसोसिएशन जो है वो स्ट्रांगली एनकरेज करती है वो सारी एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो एक केयर गिवर, एक पेरेंट घर में बच्चे के पैदा होते ही और इवन पैदा होने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो हामिद खवातीन है, वो लाइट म्यूजिक का सुनना, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, कुछ ड्राइंग में अपने आप को एंगेज करना. जैसे ही छोटा इन्फेंट बच्चा पैदा होता है, बच्चा न्यू बॉर्न होता है, उसको वो कलरफुल सिमुलेशन देना, स्माइल करना, डिफरेंट इमोशंस उसके साथ प्रैक्टिस करना. सो ये बहुत एज अर्ली एज न्यू बॉर्न स्टार्ट हो जाती है ये सारी चीजें, एंड इट गोज अप टू द स्कूल एजेस एंड देन कॉलेज देन यूनिवर्सिटी. अगर आप स्कूल्स में भी देखें तो मैं बहुत ज्यादा एक गैप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहूंगी कि जो स्कूल में टीचर्स होती हैं, केयर गिवर्स होती हैं, अगर वो अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं, बीएड एमएड उन्होंने किया हुआ है, तो उनके पास 4 years ऑफ साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस होता है, उनको सिखाई जाती है फॉर्मल साइकोलॉजी, लर्नर साइकोलॉजी. सो इन तबके में भी इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं. क्या हमने पेरेंट को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की? क्या हमने टीचर्स की ट्रेनिंग को यूटिलाइज किया स्कूल में? यहाँ तो स्कूल में प्रीनेटल एजुकेशन में अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का तो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट आपको नजर आएगा हमारे सिस्टम में, और इन्वेस्टमेंट इस पे जरूरी है.
समीन, पाकिस्तान और इंडिया में मेंटल हेल्थ से मुतालिक मसाइल के बारे में हमारी ये राउंड टेबल अभी जारी है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको कुछ आवाजें सुनाना चाहती हूँ. ये भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से एक रिपोर्ट है जो हमारे नामा निगार जुबैर डार ने हमें भेजी थी. इस मुख्तसर रिपोर्ट से आपको अंदाजा होगा कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन, स्कूलों का बंद होना, उससे कैसे कैसे संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनमें खुदकुशियां, डिप्रेशन और तशद्दुद के बहुत से वाकयात शामिल हैं, जिनके बारे में हमारे डिस्कशन में शामिल माहिरीन ने भी निशानदेही की. ये आवाजें हकीकतन एक दलील है ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो देने के लिए.
मोहसिन अली श्रीनगर के एक स्कूल में 11वीं जमात के तालिबे इल्म हैं, लेकिन एक साल से स्कूल नहीं गए.
हमारी लाइफ ड्रेस्टिकली बहुत चेंज हो गई है स्टूडेंट्स की लाइफ. जो लॉकडाउन से पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, वो सारा जो एक्टिविटी है, जो रूटीन थी हमारी, वो सारी बिगड़ गई इस लॉकडाउन की वजह से. मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब और डिप्रेशन में रहता है.
माहरीन तालीम और नफसियात मोहसिन अली की इस परेशानी को बेजा नहीं समझते.
वो हमारे पास अक्सर पेरेंट्स के फोन आते हैं, टीचर्स के फोन आते हैं कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे नॉर्मली अब बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, इन हालात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है. तो बच्चों में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, काफी डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, और हमें ये डर है कि पता नहीं कि ये नेगेटिव जो ये डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की, ये कहाँ पे हमारे बच्चे कहाँ लैंड कर पाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से.
इस दौरान यहाँ श्रीनगर में कायम चाइल्ड वेलबींग सेंटर में मेंटल हेल्थ के 124 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तकरीबन 800 बच्चे उनसे जहनी सेहत के हवाले से फोन पर मशवरा ले चुके हैं. माहिर नफसियात खबरदार करते हैं कि अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू न पाया जाता तो तालिबे इल्मों में नजर आने वाला जहनी दबाव डिप्रेशन और मजीद संजीदा अमराज में बदल सकता है.
फॉर डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट की है, देयर इज 72% इंक्रीज इन फैमिलीज. तो जब माँ बाप की भी जो जहनी सेहत है वो ठीक नहीं रही है, तो बच्चों पर भी डबल असर उसका पड़ेगा. तो जब उनको अपने जो डेली रूटीन से उनसे हटाया जाए कि बाहर न जाना, खेल कूद बंद हो गया, कि अगर अनकंट्रोल रहा तो जो आज का मामूली स्ट्रेस है बच्चों को, कल वो डिप्रेशन में चेंज हो सकता है.
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले कई मकामी और बैन अल-अक़वामी सरकारी तंजीमों का कहना है कि वो अब अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं.
When there's a two aspect of mental health, one is curative and one is preventive. So definitely we are working on the preventive part, not a curative part. So curative part जो है हमारे पास दो तीन organisation है वो curative part पे है. जो अभी जो मुझे लग रहा है कि save the children now need to work in even for curative part also. But क्योंकि अभी हमारा percentage और ये बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत ज्यादा है, तो अभी मतलब ऐसा जे एन के सेव द चिल्ड्रन फील दैट वी शुड वर्क ऑन मेंटल हेल्थ.
ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखने वाले बाज तजिया निगारों का कहना है कि इलाके में बरसों से जारी बदअमनी और गैर यकीनी नौजवान नस्ल पर गालिब आ चुकी है और इन्हें तेजी के साथ निगल रही है.
इतना लगता है कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइडल मोड बन जाता है. सुसाइडल में अब मिलिटेंसी हम देखते हैं आए दिन, जहाँ यहाँ बच्चे मरते हैं.
ज़ुबैर हमदार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर.
तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, और अब चलते हैं अपने डिस्कशन की जानिब.
डॉक्टर जुगल किशोर, जब मुख्तलिफ हम कम्युनिटीज में देखते हैं तो इकोनॉमिक जो क्लास है उसके हवाले से भी
اور جینڈر کے حوالے سے بھی عمر کے حوالے سے بھی. تو اس میں ذہنی جو امراض ہیں ان میں کوئی تخصیص ہے کہ مختلف علاقوں میں یا مختلف جو اقتصادی طبقے ہیں ان میں اور جو عمر ہے اس میں مختلف ہوتے ہیں؟
یہ بہت اچھا کوشچن پوچھا سرینا نے. بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا کہ ہمیں بچپن سے یا کہنا چاہیے پریگنینسی سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے, ادروائز ڈپریشن تو انفینٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی پرسنٹیج میں ملا ہے. ایون جو ہماری پوسٹ پارٹم میں مہیلائیں ہوتی ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں ان میں ڈپریشن ہے یا انزائٹی سائیکوٹک تک ہوتا ہے, تو وہ پریگنینسی سے بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم اپنے دیش میں بات کریں تو ڈفرینٹ جو گروپس ہیں اس میں طرح طرح کے ہمارے کو ڈفرینسز ملتے ہیں جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. تو اگر ہم ڈپریشن پہ کہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جو ہمارے رورل ایریا ہے اربن ایریا ہے آلموسٹ سیم ہی مینٹل ڈسارڈرز کی پریویلنس ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹ کرنا کہ زیادہ ان میں ہوں گے. ہر ویکتی اپنے طریقے سے اس اپنے مائنڈ کو اسٹریس میں لاتا ہے. جو امیر ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو اسٹریس میں لاتا ہے اور لیڈنگ ٹو ڈپریشن, اور جو غریب ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو کرتا ہے اور اس وجہ سے. تو یہ تو پروسیسز ہیں جو اس کو ایڈورسٹی کے وجہ سے اس کو بعد میں مینٹل ڈسارڈر ہوتا ہے. اور ہر طرح کے مینٹل ڈسارڈر ملے ہیں, ہر طبقے میں ملے ہیں, ہمارے اسلام ایریا میں ملے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ وہ ایڈورس زیادہ ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر سائیکیٹرسٹ نہیں ہے یا سائیکولوجسٹ نہیں ہے. جیسے کہ اور دوسرے اسپیکر نے بہت اچھے سے بولا کہ ہمارے پاس میں سائیکولوجسٹ نہیں ہے ہر جگہ. ہمارے یہاں بھی ہمارے پورے دیش میں اگر کہیں تو بڑے بڑے ہاسپٹل میں سائیکولوجسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کو ایک جو پراپر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. اور پرائیویٹلی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں شہروں میں آپ کو ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ مل جائیں گے اور سائیکولوجسٹ کچھ مل جائیں گے, لیکن اگر رورل ایریا یا سلم کی طرف اگر سوچیں تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر ہم ریسورس کی بات کریں تو بہت گیپ ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ کس طرح کے سائیکیٹرک ڈسارڈر ڈفرینٹ کمیونٹیز کے اندر ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فرق ملے گا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسپریشن کیسا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہو جاتا ہے, اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے.
اچھا شکریہ. اور ڈاکٹر عائشہ آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور اس وقت تفصیل سے اگر آپ پاکستان کے بارے میں بتانا چاہیں.
جی تھینک یو. یہ بہت اچھا سوال تھا شہناز آپ کا. سو جب ہم کسی بھی سائیکیٹرک ڈسارڈر کسی بھی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو جب ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جو اس ڈس آرڈر کی طرف لے کر آئی ہیں, تو ہمارا ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کہتے ہیں, جس میں بایولوجیکل فیکٹرز کیا تھے. بایولوجیکل فیکٹرز سے مقصد کہ جینیٹک یو نو ولنریبلٹی کتنی تھی, فیملی ہسٹری ہے کہ نہیں ہے اس پرٹیکولر ڈس آرڈر کی. اور کافی سارے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ایسے ہیں موسٹ آف دیم جن کی فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہوتی ہے جاننا, کہ اگر آپ کی فیملی میں یہ چیز ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, بائی پولر ڈس آرڈر وغیرہ ہے, تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں, آپ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. دس از دا سیم لائک اینی ادر ڈس آرڈر, جیسے ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, تو یو نو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کی بھی اسی طرح ولنریبلٹی ہوتی ہے. پھر ہم سائیکولوجیکل فیکٹرز دیکھتے ہیں اور سوشل فیکٹرز دیکھتے ہیں. سائیکولوجیکل فیکٹرز میں کہ ارلی, جیسے شرینا نے بھی بات کی کہ ارلی ایڈورسٹی کیا ہوئی ہے, بچپن آپ کا کیسا گزرا ہے, پریگنینسی کیسی تھی, اس کے آگے اسکولنگ کیسی ہوئی ہے, اس میں یو نو ہارڈ شپس کتنی ہوئی ہیں, بلنگ ہوئی ہے بچے کے ساتھ یا نہیں ہوئی ہے, گھر میں کیسا ماحول تھا, کانفلکٹ کتنا تھا گھر میں, تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جس کو سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں. اینڈ دین سوشل فیکٹرز جو کہ بہت ضروری ہیں, جو آپ کا سوال تھا کہ یو نو سوشو اکنامک کیا چیزیں تھیں جن کو آپ سوشو اکنامک ڈٹرمیننٹس آف ہیلتھ کہتے ہیں, کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی النسز پہ فرق پڑتا ہے. اور صرف سائیکیٹرک النسز نہیں, ہر ڈس آرڈر پہ فرق پڑتا ہے. تو جس میں آپ کی پاورٹی آ جاتی ہے, غربت کتنی ہے, ایکسس آپ کو کتنا اویلیبل ہے ہیلتھ سسٹمس پہ, آپ کی جو ہے ایجوکیشن کتنی زیادہ ہے, اسکولنگ اویلیبل تھی کہ نہیں تھی, اینڈ دین انمپلائمنٹ از اے بگ فیکٹر ان پاکستان ایٹ لیسٹ. آئی ایم شیور انڈیا میں بھی ایسے ڈفرنٹ نہیں ہوگا. سو دیٹ از آلسو این ایڈورسٹی, سوشل ایڈورسٹی. سو یو نو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ڈس آرڈر جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ ہر پیشنٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یو نو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اس شخص کو یہ ڈس آرڈر ہوا ہے یا پرپیچویٹ کیا ہے یا ورس ہو رہا ہے یا اتنا ورس نہیں ہے. باقی جہاں آپ نے بولا کہ ڈفرینٹ لوگوں میں اگر زیادہ ہوتا ہے تو ناٹ ریئلی, اگین جیسے ڈاکٹر جبل نے بھی بات کی, some things are more common in some people, like kuch bachcho ki kuch diseases hai jo bahut zyada bachcho ki aur adolescents ki specific hai, ADHD hai, autism hai, developmental delays vagaira and psychiatric issues associated with that, wo bachcho mein zyada hote hai. Similarly, depression ka jo prevalence hai wo auraton mein zyada hai, especially menarche, puberty se leke menarche se leke menopause tak, to wo wala time auraton mein zyada hota hai. Hamare mulkon mein, and again, you know, I feel ke dono countries mein probably similar hoga, मर्द जो है वो उन डिप्रेशन का इजहार जो है somehow in a lot of ways गुस्से की सूरत में करते हैं कि वो यू नो दे डोंट शो सिम्टम्स. एंड ये बहुत कल्चरल, हमारा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है. जिस तरीके से हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं कि उदासी होती है, क्राइंग स्पेल्स हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, हिस्सा नहीं लेते दूसरी चीजों में, मर्द हमारे बिकॉज ऑफ आर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उस चीज को उस तरीके से इजहार नहीं करते. लॉट ऑफ टाइम्स इट कम्स आउट एज एंगर एंड अग्रेशन. एंड हमारे आई फील कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे मर्द हजरात में इस वजह से मिस हो जाती है, बिकॉज हमारे कल्चर में वो एक एक्सेप्टेबल सी चीज है कि मर्दों को तो गुस्सा आता है, अगर आ भी रहा है तो उसको हमें किसी तरीके से मैनेज करना है और अकोमोडेट करना है. देयर इज अ बिग गैप देयर जो कि बहुत मिसिंग है, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम जो है वो और आगे देखने में आते हैं.
डॉक्टर खाना, अब आप इसमें कोई अगर ऐड करें, एक बात मैं आपसे ये सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि कौन सा डिसऑर्डर है मेंटल जो कि जेनेटिक है, अगर है माँ या बाप को तो वो मुंतकिल हो जाएगा बच्चे में.
काफी उन्होंने डिटेल्स में डॉक्टर आयशनिया ने सवाल का जवाब दिया है, पर जस्ट टू इसको एक बार यू नो टू पुट इट टू बेड कि सारी दुनिया में जगह जगह मेंटल हेल्थ सर्वेस हुए हैं, हर किस्म की जगह में हुए हैं, हर शहर, बड़े शहर में हुए हैं, छोटे गांव में हुए हैं. नतीजा ये है कि चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे टोबा टेक सिंह हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कराची हो, बाय एंड लार्ज रफली द फ्रीक्वेंसी इलनेस की, चाहे वो सीवियर मेंटल इलनेस हो, चाहे वो जो एंग्जाइटी डिप्रेशन माइल्ड होती है,
जी,
वो सेम है. कहीं मेंटल इलनेस ज्यादा नहीं होती है, कहीं मेंटल इलनेस कम नहीं होती है. अब उनकी शक्लें थोड़ी सी कल्चर के हिसाब से, जैसा बताया गया है डॉक्टर आयशा ने बहुत अच्छे से, कि वो अलग हो सकती है. एक बीच में आपने सवाल पूछा था कि लोग कैसे लेते हैं मेंटल इलनेस को और इलाज. मेंटली इल जो होता है या उसकी फैमिली जो होती है, वो जब तक ट्रीटमेंट तक पहुंचती है उसमें दो तरह के वेरियंस होते हैं. एक को हम सॉफ्ट वेरियंस कहते हैं, एक हार्ड वेरियंस. हार्ड वेरियंस तो हो गया कि जैसे बहुत रिमोट जगह है, बहुत दूर है, ट्रीटमेंट जाना ही मुश्किल है, या जा सकते हैं लेकिन खर्चा बहुत लगता है. तो दीज आर हार्ड बैरियर. जो सॉफ्ट बैरियर्स होते हैं वो एक तो होता है कि पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि ये हैवी बीमारी, और अगर ये बीमारी है कि आदमी उदास है, ये किस तरह की बीमारी हुई और ये नहीं पता होता, और अगर बीमारी है भी तो ये किस तरह की बीमारी है, इसको किस तरह के डॉक्टर ठीक करते हैं, ये अवेयरनेस है. और दूसरा जो है, जो स्टिग्मा है कि पता है कि बीमारी है, एक पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनकी बेटी का बिहेवियर ठीक नहीं है, कुछ दिनों से उनको पता है कि ये बीमारी है, पढ़े लिखे हैं खुद, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, उनको खर्चे की भी नहीं प्रॉब्लम, उनको पता है कि रीइंबर्स हो जाएंगे ऑफिस से. लेकिन इसको, लड़की को हम वहां लेके जाएंगे तो किसी ने देख लिया तो इसको रिश्ता नहीं मिलेगा. ये जो है, ये स्टिग्मा जो है, दिस इज अ मेजर थिंग इन आवर कंट्रीज. हम सोचते हैं कि ये स्टिग्मा गरीबों में ज्यादा होता होगा या अमीरों में ज्यादा होता है, ये मिडिल क्लास में ज्यादा होता है. जो अमीर होते हैं वो दे कैन मैनेज समहाउ, के जो लुधियाना में रहता है वो बॉम्बे जाके ट्रीटमेंट करा लेता है, जो मुल्तान में रहता है वो लाहौर जाके कराता है, लाहौर वाला कराची जाके करा लेता है, तो मैनेज कर लेते हैं. जो बहुत गरीब होते हैं उनको आप उनका फ्री इलाज करवा दीजिए, वो कहीं से भी करवा लेंगे. लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल क्लास में रहता है कि देख लेंगे तो लोग क्या कहेंगे. तो ये हो गया आपका उसका स्टिग्मा के बारे में जो मैं ऐड करना चाहता था. आप कुछ और पूछ रहे थे.
ये कि जेनेटिक इसमें कौन सा डिसऑर्डर है जो मुंतकिल हो सकता है.
एक तो होता है कि जेनेटिक्स जो जीन्स में चेंजेस होती है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इफेक्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जीन्स में चेंजेस हो गई हैं तो वो वैसा एक्सप्रेस भी होगा पेशेंट में. वो एक डिफरेंट डायमेंशन है. One can be quite heavily loaded with bad genes but still not have a mental illness. और वन कैन नॉट बी सो हैवीली लोडेड एंड स्टिल हैव मेंटल इलनेस, जिसको एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, जिसको मेटाजेनेटिक्स का फील्ड जो है वो अलग है. अब बच्चों में जो मेंटल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, मेंटल सब नॉर्मेलिटीज होती हैं, वो ज्यादा फिजिकली डिटर्मिंड होती हैं और उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बायोकेमिकल होती हैं, मेटाबॉलिक होती हैं, वो जो है वो जेनेटिक्स होती हैं. और कुछ साइकोटिक इलनेसेस बच्चों में ज्यादा नहीं होती, पर जब होती हैं तो वो भी जेनेटिकली डिटर्मिंड होती हैं. बट देर आर मेनी फैक्टर्स विच यू नो डिटर्मिन के ये एक्चुअली एक्सप्रेस होगी, और एक्सप्रेस होगी तो कैसे होगी, जिसको बायोसाइकोसोशल रूल्स कहा जाता है. कि अर्ली अपब्रिंगिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि जेनेटिक लोडिंग है भी तो एक्सप्रेस होगी या नहीं.
एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मुनेजा से यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर मुनेजा काम करती हैं खवातीन के साथ, तो इसमें अभी डॉक्टर आयशा ने एक बात कही थी कि मर्द जो हैं उनके साथ जो कोई जहनी मसला होता है उसका जो इजहार होता है वो गुस्से की शक्ल में होता है, तो किस हद तक जो खवातीन के साथ तशद्दुद का मामला है वो इस मसले से जुड़ा हुआ है.
जी, मैं इसमें ऐड करूं कि हमारे यहाँ यहाँ जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि ये साउथ एशिया का पहला सेंटर, और ये स्टार्ट हुआ मार्च 2017 में, एंड टिल डेट हमारे पास 5200 केसेस रजिस्टर्ड हैं ऑन रिकॉर्ड.
अच्छा.
राइट. तो वहां पर मेजॉरिटी केसेस में जो एग्रेशन है या जो उनका फिजिकल वायलेंस है वो कॉज किया है एग्रेशन की वजह से, या उसमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, मेंटल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व थे, या उसमें ऐसी कंडीशंस इन्वॉल्व थी जिसमें उसने उस एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर अपना एग्रेशन उस पर निकाला है, वो चाहे वो मेंटेरली था या उसका बैकग्राउंड मौजूद था. और इसमें फर्दर भी ऐड करूं कि हमारे यहाँ ये जो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन थी, तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड केसेस थे या रजिस्टर्ड केसेस थे, रिपोर्टेड केसेस थे, वो जो रेशियो थी हमारी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी. अब उसमें एक सिचुएशनल फैक्टर ये भी था कि पेंडेमिक की वजह से, सोशल आइसोलेशन की वजह से, जो मेल फिगर था वो पहले घर पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, अब वो एक चीज, दूसरी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो जो एक आइसोलेशन या वो फैक्टर, या उनकी जो एक जॉब रिलेटेड इश्यूज थे, अनएम्प्लॉयमेंट हमने जैसे मेंशन किया कि वो बढ़ी, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो कॉज कर रहे थे उनके, लीड कर रहे थे टूवर्ड एग्रेशन. हमारे यहाँ बहुत एक रेशियो इंक्रीज कर गई अब्रप्टली ड्यू टू दिस पेंडेमिक कंडीशन एज वेल. बात कर रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो बेसिकली कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो यूजुअली टेंड टू रन इन फैमिलीज, उसमें जिसकी पोटेंशियल होता है कुछ डिसऑर्डर्स में जिनमें जेनेटिकल रूट्स होती हैं, उसमें हम जैसे बच्चों की बात कर रहे थे तो उसमें ADHD, जैसे डॉक्टर आयशा ने भी मेंशन किया, डॉक्टर शरीना ने भी मेंशन किया, ADHD, ऑटिज्म आर वेरी कॉमन इन जेनेटिकली ट्रांसमिशन, और दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन और स्किजोफ्रेनिया में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu.
डॉक्टर शनिला, अब आप बताइए मुझे कि जो डॉक्टर मुनेजा ने कही कि इस तरह का जो डिसऑर्डर है ऑटिज्म या दूसरी चीजें जो है, इसका कोई मौजूद है तरीका कि जिसको शुरू अर्ली स्टेज में बदला जा सके, किसी तरह बेहतर किया जा सके?
थैंक यू शनाज. वैसे मेरा क्योंकि ताल्लुक सोशल साइंस से है तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज जो हम प्रमोट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी. तो ये जो पहला आपने सवाल किया है, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होती है तो पेरेंट जो एक स्टिग्मा की टुवर्ड्स चले जाते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो ये बहुत छोटा है. सो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को एड्रेस करने के लिए ना तो कोई जेंडर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ना एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है. जैसे ही इसकी प्रेवलेंस की डायग्नोस्टिक हो जाती है, दैट मोमेंट वी नीड टू स्टार्ट अर्ली. इसीलिए हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड में अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है. सो आपका आंसर मैं इससे करना चाहूंगी. बाकी हम कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो अपने जो है हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर के जो प्रोग्रामेटिक एजेंसीज होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए बताते हैं कि जब भी वो मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स को प्लान करें या उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें, तो सबसे पहला एक बहुत जरूरी है इस स्पेक्ट से देखना मेंटल हेल्थ को कि एक होलिस्टिक मेंटल हेल्थ एजेंडा होना चाहिए. इसमें हम इंग्लिश को और इसमें हम सोशल फैक्टर्स को दो अलग अलग तरीके से लेकर नहीं चल सकते. बिकॉज कुछ आइडेंटिफाइड डायग्नोस जो है आपकी मेंटल इलनेस होती है और ऐसे बेशुमार मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होती है. सो होलिस्टिक मेंटल हेल्थ एजेंडा को लेकर चलना बहुत जरूरी है. सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड में डी स्टिग्माइजेशन का बहुत बड़ा रोल है. इसके लिए मैसिव अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी हम छोटे बच्चों से बात करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फ्रेम जेंडर सेंसिटिविटी की ना दें कि आप लड़के हैं आप रो नहीं सकते, आप लड़कियां हैं आप रो रो से कह के नहीं लगा सकती, जो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा होता है. सेकेंड, हमारे पेरेंट्स अब्यूज के बारे में या हरासमेंट के बारे में बात करने से बहुत ज्यादा जो है वो घबराते हैं. उसकी भी कोई एज नहीं होती. आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, काफी यंग बच्चों के बहुत अब्यूज के इंसिडेंट्स आ रहे हैं. सो अर्ली एजेस में अब्यूज के बारे में, हरासमेंट के बारे में बच्चों को एजुकेट करना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है. क्योंकि खुदा ना करे अगर ये कोई ऐसी उनकी मेंटल उसमें जो है फ्रेम में ये चीज रजिस्टर्ड हो गई, ये ट्रॉमा रजिस्टर हो गया, तो उनकी लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्टिव इसके बहुत बुरे एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते.
शनिला, ये अभी लेटेस्ट केस हुआ है 2.5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है 4 सदा में. दिल्ली में 6 माह की बच्ची के रेप की खबर आई थी. इससे पहले पाकिस्तान में 18 माह की बच्ची की. और ये तो हुए हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि उन्हें मार डाला उसकी वजह से पुलिस शामिल होगी. पता नहीं कितने केसेस होते होंगे. तो इसमें माओ को किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, इतने छोटे बच्चे को तो आप कुछ भी नहीं बता सकते.
बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट शहनाज, मैं इससे यही बात करना चाहूंगी कि अवेयरनेस इवन हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं अबाउट गुड टच बैड टच, अबाउट स्ट्रेंजर एटिकेट्स, अबाउट पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल केयर. और इस पे बहुत बड़ा रोल है जो हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स का, जो कि पेरेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कराएं ताकि उनको पेरेंट रेडीनेस हो कि पेरेंट बनने के साथ साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं. उनको ये अवेयरनेस हो कि अब्यूज के बारे में, हरासमेंट के बारे में, पर्सनल केयर के बारे में बच्चे से बात कैसे करनी है. सिमिलरली उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी स्टिग्माइज होगी तो वो फिर नेचुरली अपनी फैमिलीज में बात नहीं कर जाएंगे कर सकेंगे. मैं चाहूंगी दूसरे एक्सपर्ट्स भी इस पे अपना ओपिनियन जरूर दें.
मेबी ऐड समथिंग इसमें.
जी जी जरूर.
जी, सो दिस इज डॉक्टर आयशा हियर. मैं इस आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, एंड इस वजह जैसे मैं चाह रही थी कि मैं ये जरूर बात लेकर आऊँ. जब भी रेप की कोई भी बात आती है तो somehow or the other responsibility जो है वो किसी ना किसी लेवल पे औरत पे डाल दी जाती है. चाहे वो औरत खुद रेप हुई है, अगर बच्ची रेप हुई है तो वो माँ पे डाल दी जाती है. मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि वी आर मिसिंग द बोट हियर. देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ मेल एजुकेशन जो कि हम कम्प्लीटली इसको मिस आउट कर देते हैं. कैसे एक 6 माह की बच्ची को या 2 साल की बच्ची को रेप किया, उस लड़के की, उस मर्द की क्या एजुकेशन हुई है, उसको उसकी नर्चरेंस कैसे हुई है. जैसे शलीना ने बात की कि हमने एक, जब हम अपने लड़कों को नर्चर करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते, तुम मर्द बनो, तुम अग्रेशन शो करो, तुम जेंटल नहीं हो सकते, तुम सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकते. तो जब हम ये सारी चीजें अपने लड़कों को सिखा रहे होते हैं तो हम उनको ये कह रहे होते हैं कि ये सारी चीजें औरतें करती हैं, तुम्हें अग्रेशन या फिजिकल फोर्स या यू नो अपने इमोशंस को छुपाना या स्ट्रेंथ अपनी एक्सप्रेस करना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है. सो आई फील के नाउ इट्स हाई टाइम कि हम कम्प्लीटली इस जगह से शिफ्ट होके के औरतों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के या मर्दों पे यू नो माओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के बजाय कम्प्लीट अगर शिफ्ट करें कि जब हमारे एंड फोकस करें हमारे बॉयज की एजुकेशन पे, साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो उनकी है कि उनको किस तरीके से हमने नर्चर करना है, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. अगर वो किसी भी मर्द, औरत, बच्ची, जानवर, किसी भी चीज, किसी के साथ भी ज्यादती करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी है. तो आई थिंक दैट वी विल प्रोबेबली नाउ मूव अहेड. मैं आपको इधर एक छोटी सी वेरी क्विकली मैं आपको बताऊं यहाँ पे, बिकॉज ये मैंने बहुत इस पे रिसर्च वगैरह भी की और काम भी किया. द मोस्ट कॉमन perpetrator रेप का, मोस्ट कॉमन perpetrator ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द बायोलॉजिकल फादर.
हाँ, और या करीबी अजीज कोई.
तो आप सबसे पहले बायोलॉजिकल फादर और उसके बाद कोई करीबी अजीज, तो आप बाप से कैसे बचाएंगे फिर बच्चे को?
माँ ही बचा सकती है.
राइट, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है और हाउ टू बी यू नो मैनेज.
बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर किशोर, फिर अब जो अब तक बात हुई थोड़ा सा आप उसको कंक्लूड करें और कुछ ऐड करें उसमें, तो हम अगले डॉक्टर आयशा से लेना चाहूंगा.
जी, हाँ, शहना जी बहुत अच्छे से इसके रीजन बताए और रेप के बारे में भी हमने सुना, रेप इज लिंक टू मेंटल हेल्थ, किस तरह से अगर चाइल्ड अब्यूज होता है या किसी भी टाइम में किसी भी तरह का अब्यूज या वायलेंस होता है तो उससे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। ये किसी पे ये थोपना कि माँ इसमें जिम्मेदार है या बच्चे हैं या फिर पूरा समाज में मेल जो है वो जिम्मेदार है, मुझे तो ये लगता है कि इसमें सभी जिम्मेदार होते हैं जब तक कि उसमें हम एक अच्छे तरीके से एक प्रोग्रामेटिक वे से उसको हम मैनेज ना करें। किसी के ऊपर ब्लेम करना यू नो इट्स ए वन वे जो हमारे पॉलिटिशियन और सब लोग करते हैं कि ये उसकी वजह से है। एक्चुअली मैंने भी बहुत स्टडी किया और उसमें यही पाया कि जो ये जेंडर डिफरेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो हमारे रिलीजियस फेथ हैं या कल्चरल माहौल है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बच्चा उसी में पल रहा होता है, बड़ा जो है आदमी है या औरत है वो उसी के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हमारे को क्रिएट करते हैं वही रीजन है जिसकी वजह से इस तरह का वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या जेंडर एक एक्सपेक्टेशन होता है या हमारी सेंसिटिविटी खत्म है इतनी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशन रेप होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए कि एक जो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव जो कंसेप्ट है उसको हम बहुत ही छोटेपन से सिखाएं उसे, और जो ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल और ये सब चीजें वो तभी एक अच्छे समाज की हमें वो हो सकता है कि वो बन पाएगा।
डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान में ऐसे इदारे बहुत कम है, ना होने के बराबर तकरीबन। अगर कोई ज़हनी मरीज उस हालत में हो कि उसे किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिल करना पड़े तो उसके लिए क्या सहूलतें हैं इस वक्त मौजूद?
जी जनाब, तो पाकिस्तान में आप सही कह रही हैं कि उतनी जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम इंस्टीट्यूशन है, करवाने हैं आते हैं, यू नो कावस्ती सेंटर है, फाउंटेन हाउस है, ये भी बड़े बड़े शहरों में है, हमारे गाँव में अगेन इस तरह की नहीं है। लेकिन एक आई फील कि यू नो ये तो एक टर्शरी लेवल पे है ना, कि जब एक चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या सिवियर हो जाती है, आपके अस्पतालों के अंदर साइकियाट्रिक वार्ड जरूर है, आगरा खान में भी है और जेपीएमसी में भी है, और हर जगह साइकियाट्री के वार्ड्स हैं। अभी हमारे जिना हॉस्पिटल में 100 बेड का साइकियाट्री हॉस्पिटल बन रहा है, इंशाल्लाह 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग के यू नो अस्पतालों की और यू नो इन पेशेंट केयर की जरूरत है, बट मोर देन दैट आई रियली स्ट्रांगली फील है, हमारे पास अब यहाँ पे कम्युनिटी साइकियाट्रिस्ट भी अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट भी है, वो भी यही कहेंगे, इससे कहीं ज्यादा हमारा प्राइमरी लेवल पे वी नीड टू ट्रेन मोर साइकियाट्रिस्ट, वी नीड टू ट्रेन मोर साइकोलॉजिस्ट, वी नीड टू ट्रेन मोर पीडियाट्रिशियंस या फैमिली फिजिशियंस जो कि मेंटल हेल्थ समझते हैं, जो ये प्रिवेंशन लेवल पे या सिस्टम्स लेवल पे जो हम काम कर सकते हैं, यू नो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो वर्किंग एट द इनपेशेंट, बिकॉज मेंटल हेल्थ का ज्यादातर काम जो है या ज्यादातर जो इम्पैक्ट आता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे होता है। जब आप इतना टर्शियरी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बस आप एक हद तक ही एक चीज कर सकते हैं, यू ऑलरेडी मिस्ड द बोट इन सम वेज एज वेल। बहुत सिवियर डिसऑर्डर्स बहुत कम होती है, यूटेज बहुत कम होती है, फिर भी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ पेशेंट्स विद साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो कि जॉब भी करते हैं और अपनी जिंदगी खुद ही इंडिपेंडेंटली गुजार लेते हैं। बाकी जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं लाइक जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, दीज आर वेरी ट्रीटेबल एंड लोग बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत एज मच एज यू एंड मी। सो अगेन यू नो ये भी एक मिथ है, एक स्टिग्मा है अगेन साइकियाट्रिक इलनेस, बिकॉज जब हम फिल्म इंडस्ट्री को हमारी देखें या टीवी में देखें तो पागल का जो एक इमेज आता है, तो somebody जिसके कपड़े वपड़े फटे हुए हैं और वो सड़क पे होमलेस जो है वो उधर से उधर चल रहा है, तो उसने हमारा एक यू नो परसेप्शन और स्टिग्मा को बहुत बढ़ाया और परसेप्शन बहुत गलत कर दी है। मोस्ट पीपल 99% ऑफ द पीपल विद मेंटल इलनेस आर लाइक यू एंड मी।
जो भी इस वक्त सिचुएशन है दोनों मुल्कों की, तो उसमें क्या इस वक्त पॉलिसी में सबसे अहम क्या चीजें होनी चाहिए या आम आदमी की सतह पर क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए?
पहली बात तो ये है कि पेंडेमिक सिचुएशन में जहां तक मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस की ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स पहले से थी वो तो थी ही, उसके अलावा वह ये कम से कम यहाँ इंडिया में 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन हो गया, अब हमारे बहुत से पेशेंट्स जो ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट थे उनके दवाइयां मिलनी बंद हो गई, डॉक्टर को वो दिखाने नहीं जा सकते और वो डेढ़ महीना रहा वो लॉकडाउन। तो द गवर्नमेंट डिड कम आउट, कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे आए जैसे कि रिमोटली टेली साइकियाट्री से आप पेशेंट्स देख सकते हैं। सो दिस वॉज एन इनिशिएटिव विच फॉर द फर्स्ट टाइम हैपन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड टू डील विद द पेंडेमिक। मैं चाहूंगा कि सब लोग इसके बारे में सोचें और ये अगर फिजिबल किसी और स्पेशलिटी में हो ना हो, हमारे में सबसे ज्यादा है। केमिस्ट को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वो जो इस तरह के रिमोटली प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं वो उनको दें, और हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल ने ये ऑर्डर्स किए हैं। सबसे ज्यादा सफर मेरे ख्याल में जो पेंडेमिक में किया है वो बच्चों ने किया है। दे हैव बीन पैरालाइज्ड विद एंजाइटी क्योंकि वो अपने पास अपने पेरेंट्स को जब पैनिक में देखते हैं, देयर इज नथिंग मोर ट्रॉमेटाइजिंग बच्चे के लिए जितना की ये बात है। कम से कम शहरों में घर बहुत छोटे छोटे हैं और फैमिलीज बहुत टाइटली रहती हैं। पहले होता था कि माँ बाप चले जाते थे काम करने, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहना पड़ता था। दूसरी बात ये है कि घर प्रेशर कुकर की तरह बहुत फैमिलीज में होता है कि बहुत कोई अच्छी जगह नहीं होती है फैमिलीज। हुआ ये है कि घर एक प्रेशर कुकर बन गया और जो स्कूल्स एक रिलीज वॉल्व थे वो बंद हो गए। इससे जो ट्रॉमा हुआ है बच्चों को वो बहुत ज्यादा हुआ है और अभी तक बच्चे आपको बाहर नहीं नजर आते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूसली इट इज ऑन गोइंग, स्कूल अभी भी बंद है और बच्चे अभी भी घरों में बंद है। एंड आई थिंक नोबडी हैज स्पेसिफिकली थॉट ऑफ दैट।
सर लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट दिस के स्कूल्स बहुत जल्दी से खोल देने चाहिए हमें, और ये भी एविडेंस मिले कि जैसे नंबर ऑफ यू नो अब्यूजेस इंक्रीज वेरी मच, के जो एक डिस्पेरेट कॉल आती हैं, जो ऐसे सेंटर हैं जो बच्चों को की कॉल्स रिसीव करती हैं, तो कई गुना बढ़ गई। विद इन 10 डेज यू नो 1000 कॉल हो गई। तो ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे बायोलॉजिकल जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वही वायलेंस करते हैं, वही अब्यूज करते हैं। सेक्सुअल अब्यूज ज्यादातर उन्हीं से होता है,
उसे ना भी करें, आपस में झगड़ते रहे।
डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बड़ा इसमें, और ये सारे हैं जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ाया उन्होंने, साथ में फिर एंग्जाइटी हुई, डिप्रेशन बढ़ गया, फिर आपने कहा कि जैसे उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं तो उसमें बहुत एक्टिवेशन हुए। तो कहना चाहिए पूरे पैंडेमिक ने बहुत ही एक डिस्टर्ब माहौल किया, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ के हिसाब से, और उसमें डेफिनेटली ये दोबारा से एक कॉल है। WHO has decided कि इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ये एक मौका है कि अगर हम मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो सोसाइटी है वो थोड़ा हेल्थी होगा। और इसमें इतने सारे एंगल हैं अगर आप देखें, और मेंटल हेल्थ जो एक हेल्थ है उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल कैरिकुलम में वही सबसे कम पढ़ाते हैं और वही नहीं होता है।
आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड यही कह के कि हर एक ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही, बट ये जो हम एक्सेस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जितने भी चुके हमारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तादाद बहुत कम है, तो उनपे एक बहुत ज्यादा एंड अदर पीपल जैसे हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो उनके लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकाइट्रिस्ट के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना लिमिटेड पेशेंट्स इनकाउंटर से बढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवोकेसी की भी है। गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे हम ये काम करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेनिंग की भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग की भी है, अवेयरनेस रेजिंग की भी है। सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे भी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग जो है यू नो इस चीज को अब पढ़ रहे हैं, उसका जिक्र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त है, कोविड की वजह से और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है, बिकॉज समझ आ रहा है हेल्थ सिस्टम्स को भी और गवर्नमेंट्स को भी कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और हर कोई जो है अपना रोल सही तरीके से अदा कर पाए। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, एंड आई थिंक अगेन मेंटल हेल्थ के हवाले से थैंक यू शहनाज के आपने ये शो भी करवाया।
जी मैं भी शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर आयशा मियां आपका और अपने बाकी मेहमानों का कि आप सब ने बड़ी खूबी से 55 मिनट के दौरान बहुत सारे मसाइल का इहाता किया। इसी तरह सिर्फ मसाइल की नहीं बल्कि हल की बात भी की जो ज्यादा आम है। तो एक बार फिर डॉक्टर आयशा मियां, डॉक्टर अनिरुद्ध काला, डॉक्टर मुनेजा भट्ट, ڈاکٹر جگل کشور اور ڈاکٹر شنیلا بھمانی، آپ سب کا شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے سننے والوں سے بات کرنے کے لیے. شناز عزیز کو اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.